कलिं सभाजे अंत्यार्या सार्वभागिना यत्र संकीर्तने नैव सार्थोपलभ्यते
भगवान् युगपद्धि मनुजैरिच्यते राजन् श्रेयसा विश्वरो हरिः।
युगानुरूपाभ्याम
युग के
अनुसार
नाम और रूप
द्वारा भगवान भगवान श्री कृष्ण युगवर्त
भी
भिन्न भिन्न युगों में जन्म लेने वाले मनुष्यों के द्वारा इज्जते पूजे जाते हैं। राजन हे महाराज विदेहराज श्रेयसाम समस्त मंगलों के ईश्वर दाता हरि भगवान कलियुग को सभा जयंती पसंद करते हैं स्वागत करते हैं। आर्या सज्जन लोग ज्ञा है। इस पर प्रश्न होता है कि कलयुग को बड़े बड़े लोग क्यों पसंद करते हैं, तो इसका उत्तर करभाजन जी दे रहे हैं। गुणज्ञा कलयुग के गुण को जानने वाले सार भागिना इसके सार को समझने वाले क्या सार है कि जत्रा जिस युग में संकीर्तनेना संकीर्तन के द्वारा एवा केवल केवल संकीर्तन के द्वारा ही सर्व समस्त स्वार्थ स्वार्थ अर्थ अभिलभ्यते प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार एवं कह करके करभाजन जी पिछली बातों की याद दिला रहे हैं। एवं इसके पहले में चार युगों के आराध्य आराधक और आराधन की विधि सब बता चुके हैं, उसी की आप स्मृति कीजिए। एवं शब्द के द्वारा एवं सबसे पहले अपने मन को मिथिला में ले चलना चाहिए, जहाँ महाराज निमि का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि मुनि जुटे हैं। तो भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्र जो जोगेश्वर हैं वे भी पधारे हैं, उनसे प्रश्न किए हैं। ये नौवां प्रश्न है। चमस जी इसके पहले उत्तर दिए थे। महाराज ने पूछा था कि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है, तो चमस जी ने बताया कि जो भक्ति नहीं करते हैं वो अधोगति में गिरते हैं, नरक में जाते हैं। इसके बाद महाराज निमि कृपा पूर्वक पूछ रहे हैं सभी जीवों पर कृपा करके, भगवान किस युग में किस रंग के होते हैं, क्या उनका आकार होता है और कैसे उनकी भक्ति की जाती है, भक्ति करने वाले में क्या क्या विशेषता होती है। तस्मिन काले स भगवान किम वर्ण की दृश्य पूजते तभी हो जाता, कैसे पूजे जाते हैं इसको कहेंगे। इसी प्रश्न का उत्तर करभाजन जी दे रहे हैं। जो पहले कहा गया तीन दिन से उसको एक बार समेट लेना चाहिए मन में। एवं किसी के मन में प्रश्न उठेगा कथन, एवं शब्द समस्त कहे हुए विषयों को स्मृति में ला देता है। एवं इस प्रकार युगानुरूपा ध्यान युग के अनुसार युगवर्ती भी उस युग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के द्वारा भगवान हरि इज्जत पूजे जाते हैं। एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, त्रेता में द्वापर में सतयुग में और कलयुग में भगवान किस रंग के होते हैं और किस तरह पूजे जाते हैं, क्या उनका नाम होता है। करभाजन जी कहते हैं कृतम त्रेता द्वापरम च कलियुगे सुकेश्वर, चार युग हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि। इन सभी युगों में भगवान पूज्य हैं, भगवान केशव। केशव ने इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा क माने ब्रह्मा, इस माने भगवान शिव। ये ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता जिनके वश में रहते हैं, ब्रह्मेश्वर बयते इति केशव, जो ब्रह्मा जी को और भगवान शिव को भी अपने वश में रखे वे हैं केशव। तो केशव भगवान सभी युगों में आराध्य है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई आराध्य नहीं है, केवल भगवान केशव। उनके केश बड़े सुंदर हैं, ये भी अर्थ है। भगवान कृष्ण आराध्य है, भगवान विष्णु। तो कृतयुग में इनका क्या रंग होता है। कृते शुक्ल सतयुग में भगवान उज्ज्वल सफेद रहते हैं, चतुर्बाह चार भुजाएं होती हैं, जो धर्म का परिवर्तन करने वाले भगवान का वर्णन किया जाता है। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिल बल कलाम बला, और उनकी जटाएं होती हैं, बलकल वस्त्र धारण करते हैं। बलकल वस्त्र का अर्थ है पेड़ों की छाल, विशेष करके केला। केला जब सूख जाता है तो उसका भी कौपिन बनाया जाता है। तो भगवान सतयुग में जो पूजे जाते हैं, जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, वे व्हाइट रहते हैं, चार भुजाएं होती हैं उनकी, सिर पर जटा, बहुत सुंदर जटा रहती है, बलकल वस्त्र पहनते हैं, परिधान कहते हैं जो कमर से नीचे वस्त्र पहने जाते हैं। तो बलकल वस्त्र पहनते हैं, विभ्रत दंड कमंडल और दंड और कमंडल धारण करते हैं। कृष्णा जिनो पवित्राक्षण, कृष्ण मृगचर्म, हरिण के चर्म को ऊपर लपेटते हैं, उपवीत है जैसे जनेऊ की तरह, लेकिन कृष्ण मृगचर्म उड़ते हैं और जनेऊ धारण करते हैं, और अक्षर माला धारण करते हैं जपने के लिए, जप माला। इससे सिद्ध है कि एक ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचारी वेश में भगवान प्रकट होते हैं और उन्हीं की उपासना सतयुग के निवासी किया करते हैं। भगवान कृष्ण इस तरह से प्रकट होते हैं सतयुग में, जटिलो बल कलाम बरा, कृष्णा जिनो पवित्राक्षण, विभ्रत दंड कमंडल, विभ्रत सभी कर्मों में लगे हैं। वे कृष्ण मृग चर्म धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं और अक्षमाला धारण करते हैं। अक्षमाला कमल के बीज की माला धारण करते हैं। कोई कोई अर्थ करते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, जो भी धारण करते हैं, लेकिन धारण करते हैं भगवान जप माला, ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। क्या सिखाते हैं उस समय मनुष्य लोग उनसे क्या सीखते हैं, मनुष्यस्तु तदा संहिता निर्वैरा सुहृद समा। उस काल में सभी मनुष्य शांत होते हैं, उनमें कोई भौतिक कामना आदि नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है, शांत रहते हैं। शांत उसको कहा जाता है जिसमें कामनाओं की हलचल नहीं है और क्रोध नहीं है। और सभी मनुष्य एक सतयुग में निर्वैरा है, किसी से किसी का कोई द्वेष नहीं है, नहीं रहता, निर्वैर। भगवान ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है गीता में, निर्वैर होने की, किसी से शत्रुता न करना, किसी से जलन न करना, यह गुण सतयुग के लोगों का होता है। तो उस समय उपासना करते हैं भगवान की तपसा, ऐसे देव की उपासना करते तपसा, तपस्या द्वारा। तपस्या का अर्थ है ध्यान, चित्तवृत्ति को चारों ओर से हटा करके श्री भगवान में लगाते हैं, उनका मन लगा ही रहता है, मन में कभी और चीजों का चिंतन नहीं होता है, इसी को तप कहा गया है। तपसा, समय न चर दमे न चर, और उनका बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और मन पर भी रहता है पूरा, तो इसको सम दम और सम कहते हैं। समय न चर दमे न चर, दम और सम से युक्त ध्यान भगवान में चित्त लगा रहता है, अखंड ध्यान, यही है सतयुग का युग धर्म, ध्यान करना। भगवान इसी को सिखाते हैं, स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होकर के और लोगों को ध्यान करना सिखाते हैं। किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, केवल भगवान के रूप गुण चिंतन में लगा रहता है मन। इस पर विचार कीजिए कितना कठिन है सतयुग में भक्ति करना, सम दम से युक्त होना पड़ेगा और निरंतर ध्यान। इस सतयुग के लोगों का यह है प्रकार भजन का, वे स्वयं शांत होते हैं, किसी से बैर नहीं होता है, सबके सुहृद होते हैं, सुहृद सबके हितैषी, सभी सबका हित करना चाहते हैं, केवल अपने ही फेर में नहीं रहते हैं। इस कलयुग में जो मनुष्यों की दशा है, इससे बिल्कुल विपरीत सतयुग में मनुष्यों की दशा होती है। करभाजन जी कहते हैं, मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृद समा, वे सबके प्रति सम भाव रखते हैं, किसी में कोई आसक्ति नहीं होती, किसी से कलह नहीं, अपने समान ही सबको समझते हैं, सबके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान। इतनी बड़ी योग्यता है सतयुग में मनुष्यों की, तो उस समय वे कर सकते हैं भगवान का ध्यान। सम दम से युक्त होकर के ध्यान में लगे रहते हैं। और त्रेता युग की भी बात बताते हैं, त्रेतायाम रक्त वर्ण सब, त्रेता में भगवान लाल रंग के होते हैं, वैसे प्रकट होते हैं चार भुजा से। त्रेतायाम रक्त वर्णो सौ चतुर्बाहु, चार भुजा में हिरण केसा, उस समय उनके केस, सिर के केस होते हैं वो बिल्कुल पीले रंग के, सोने के समान चमकते हैं। स्वयं लाल रंग के होते हैं पर उनके केस सोने के समान पीले रंग के, पिंगल। त्रयात्मा, भगवान वेद स्वरूप होते हैं, वेद की समस्त क्रियाओं को अपने में धारण किए रहते हैं और हाथ में लिए रहते हैं सुख श्रुआ, ये सब यज्ञ के साधन हैं। सुख कहते हैं घी रखने के बर्तन को, और सुरुआ कहते हैं जिस बर्तन से अग्नि में डाला जाता है घी या हवन, उसको सुरुआ कहते हैं। तो भगवान अपने हाथ में यज्ञ की सामग्री लिए रहते हैं, उस काल में मनुष्यास्तु तदा मनुजा भगवान की आराधना करते हैं। विद्या त्रैया ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मवादिना, उस समय के मनुष्यों की योग्यता करभाजन जगेश्वर बता रहे हैं। ब्रह्मिष्ठा धर्मिष्ठा सभी धर्म में लगे रहते हैं, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म में सभी लगे रहते हैं। ब्रह्मवादिना और सभी वेद के अनुसार चलते हैं, सबको शिक्षा भी देते हैं, इसको ब्रह्मवादी कहते हैं। अब के मनुष्य तो न्यूज पेपरवादी हो गए, बहुत ज्यादा विद्वान माना जाता है यदि टीवी देख करके कुछ कह रहा है या अखबार पढ़ करके, अखबारवादी हो गए। और त्रेता युग में सभी ब्रह्मवादी रहते हैं, कोई बात करते हैं तो वेद से करते हैं, वेद का उदाहरण देते हैं, धर्म में लगे रहते हैं, अपने धर्म में, वर्ण धर्म में, आश्रम धर्म में। जो उस समय श्री भगवान उनको सिखाते हैं कैसे वेद के अनुसार यज्ञ करना चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, करते हैं, स्वयं धर्मिष्ठ रहते हैं और वेद परायण होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं। तो इससे सहज जानकारी होती है कि इस कलयुग में इस तरह के यज्ञ करना संभव नहीं है। इस काल के मनुष्यों की योग्यता देख करके श्री करभाजन जोगेश्वर कहते हैं, जो बाद में बात आएगी। द्वापरे भगवान श्यामा, द्वापर युग में भगवान सांवले रहते हैं, अतसी कुसुम के समान सांवले। पीतवासा निजायुधा, और पीताम्बर पहनते हैं निजायुधा, और अपना जो प्रसिद्ध अस्त्र है उसको धारण किया रहता है, विशेष करके सुदर्शन चक्र। उस समय द्वापर युग में भक्तजन भगवान की आराधना करते हैं। महाराजोपलक्षण भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। महाराजोपलक्षण भगवान महाराज के, बड़े बड़े राजा के समान ठाट बाट से रहते हैं, छत्र और चामर से युक्त है। महाराजों के, राजाओं के लिए जो सामान जुटाते हैं, सब जुटाते हैं भक्त लोग, और वैदिक और तांत्रिक विधि से उपासना करते हैं। तांत्रिक विधि मतलब पंचरात्र आदि ग्रंथों के अनुसार और वेदों के अनुसार जैसे भगवान की स्तुतियां की गई है, तो इस तरह से स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं महाराजोचित विधि से। इस समय तो क्या सामान कोई जुटाएगा, चामर भी नहीं मिलता है। ये प्लास्टिक केवल रहता है, घुमा देते हैं, भाव है भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कोई सामग्री भी नहीं है पूजा की। ये उपासना की पद्धति है। और कलयुग में जगेश्वर करभाजन जी कहते हैं, कृष्ण बाणम तुषा कृष्णम सांगो पानस्त पार्षद। कलयुग में भगवान गोरे होते हैं, उनके मुख पर कृष्ण वर्ण रहता है, कृष्ण वर्णम कृष्ण शब्द हमेशा रहता है, और वे अपने अंग के साथ, अपने अंग उपांग के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, श्री दत्ताचार्य के साथ, और अस्त्र के साथ, अस्त्र मतलब हरिनाम और श्रीमद् भागवतम और पार्षद श्री श्रीवास आदि, श्रीवास आदि, श्रीवास आदि भक्त बिंद है, इनके साथ रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण की आराधना करते हैं भक्त कलयुग में। इनकी योग्यता क्या होती है? सुमेधसा, विवेकी होते हैं। इस युग में और कोई योग्यता नहीं होती है, परंतु इतनी अपेक्षा है विवेक होना, इस युग के गुण को पहचान लेना, तो वे इसके अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञ ही कैसा यज्ञ? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ। सुमेध सहल, और भक्ति करने वालों की योग्यता है सुमेध सहल, जिनकी मेधा है, जिनकी बुद्धि सुष्ठु है, सुंदर बुद्धि है, वे चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हैं। एक पद में कहा गया है कि चैतन्य चंद्र दया कर विचार, विचार करेले चित्त पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर जरा विचार करो, विचार करने पर चित्त में चमत्कार हो जाए, चित्त मुग्ध हो जाएगा। चैतन्य चंद्र दया कर विचार, विचार करेले चित्त पावे चमत्कार। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा अद्भुत है। तो ऐसे प्रभु का भजन करते हैं कलयुग में वे लोग जो सुमेधा होते हैं, जिनकी सुंदर बुद्धि है, विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज ग्रहण करनी चाहिए क्या छोड़नी चाहिए, इसको जो जानते हैं ठीक से। इस युग में जो सबसे बड़ा लाभ है वो है संकीर्तन।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थ विलभते। इसीलिए अन्य युगों में भी, सतयुग त्रेता द्वापर में भी जो आर्य हैं, जो सज्जन हैं, वे कलयुग का बड़ा आदर करते हैं। कलिम सभाजयंती, सभाजयंती का अर्थ स्वागत करते हैं। जन्म हुआ है सतयुग में, त्रेता में, लेकिन कली के प्रति बहुत बड़ा आदर है, स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? जबकि यह दोष का समुद्र है, क्योंकि गुणज्ञ वे गुणज्ञ होते हैं, इसके गुण को जानते हैं, कलयुग के गुण को जानते हैं। इस युग का सबसे बड़ा गुण है जत संकीर्तने न एवं, केवल संकीर्तन से, केवल नामोच्चारण से व्यक्ति सर्व स्वार्थ भी लगाते, सर्व स्वार्थ को पा लेता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ भगवत प्रेम पर्यंत पा लेता है, सर्व स्वार्थ सब कुछ मिल जाता है केवल नाम संकीर्तन से। यह गुण है कलयुग का। और कलयुग में एक और गुण है, कलकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं बापा। मन इतना गिरा हुआ होता है कलयुग में कि भगवान ने यह सब नियम दे दिया कि अगर मन में शुभ विचार उठेगा, पूर्ण होगा, तो उसका फल मिल जाएगा, और पाप का फल मन से नहीं मिलेगा, मन से करने से नहीं मिलेगा, शरीर से करने पर मिलेगा। वचन और शरीर से जब पाप किया जाता है तब उसका फल मिलता है, और पुण्य केवल मन से कर दिया जाए तो मिल जाए। यह इस युग की विशेषता है। यदि मन से भी कोई सत्कर्म करता है, मन में आप अपने रूम में बैठ करके भी यदि गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं या वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो यही युग की विशेषता है। अब सबसे बड़ा गुण है यत्र संकीर्तनेन एव सर्व स्वार्थो विलभेत, केवल विष्णु के नाम कीर्तन से सर्व स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, जो चाहते हैं सब मिल जाएगा। यहां तक कहा गया है, करभाजन जी ही कहते हैं। नात परतरम लाभ हो दे नाम भ्राम्यताम, यहां इस कीर्तन से बढ़ करके और कोई लाभ नहीं है। अतः संकीर्तनात परम लाभ, दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसी संकीर्तन से, भगवान के नाम के उच्चारण से परमम शांति, परम शांति मिलती है, और संस्कृति नष्ट जाती, जन्म मरण की परंपरा मिट जाती है, संसार बंधन खत्म हो जाता है, और परम शांति प्राप्त होती है, भगवान का धाम मिलता है, भगवान में प्रेम मिल जाता है, केवल संकीर्तन से। इस युग की विशेषता है। चारों युगों के आराध्य का वर्णन करके और अंत में करभाजन जी कहते हैं कि कलिम सभाजयंत अर्जा गुणज्ञ सारभागिन, अर्जा सज्जन गण सभी युगों में कलयुग का आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि वे कलि के गुण को जानते हैं। कलेर दोष निधे राजन, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, यह कलयुग दोषों का समुद्र है, जिधर देखिए चारों तरफ दोष ही दोष है, जैसे समुद्र में सब जगह जल ही जल भरा रहता है, अतः इस युग में केवल दोष ही दोष भरा है सब जगह। लेकिन अस्ति ही एको महान गुण है, लेकिन इसमें एक महान गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज। कृष्ण के केवल नाम कीर्तन से व्यक्ति मुक्त संग हो जाता है, आसक्ति से मुक्त हो जाता है और परम व्रजत भगवान के धाम में जाता है। परम इस प्रकृति से पार जो वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, वहां जाता है केवल संकीर्तन से। कीर्तनाद एव कीर्तन से ही अन्य युगों में सम दम आदि का पालन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, वेद पढ़ना पड़ता है, बहुत परिश्रम है भगवान को पाने में। लेकिन कलयुग में बहुत सुविधा है, केवल भगवान के नाम के उच्चारण से सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद जी ने तो और सुगम बनाया है, केवल चार नियमों का पालन करना है, अपने को रोक लेना है, निषेध है। नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, इससे बच करके और भगवान का नाम लेना है। और वही केवल 16 माला, तो यह मनुष्यों पर बहुत बड़ी कृपा है। नौ जगेश्वर के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद उदार भाव से बात कहे हैं। कई बार प्रभुपाद जी के सामने प्रश्न आया कि कोई भक्त राधा कुंड पर रखना चाहता है और 1,00,000 या 3,00,000 जप करना चाहता है। प्रभुपाद ने कह दिया 16 माला केवल करो अपने स्थान पर आकर। 16 माला जप करना एक संपूर्ण साधना है। तो करभाजन जी के उद्गार को आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी युग का आदर करते हैं सभी युगों में लोग। कलिम सभा जयंत अर्जा गुणज्ञा सार्वभागिना जत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। सर्व स्वार्थ सारे स्वार्थ, अपना अर्थ, जीव का अपना प्रयोजन क्या है, कुछ अर्थ चाहता है, काम चाहता है, धर्म चाहता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहता है और अंत में मुक्ति चाहता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए और कुछ इससे भी ऊंचे भक्त हैं जो भगवान कृष्ण का प्रेम चाहते हैं। तो जो भी चाहते हैं सर्व स्वार्थ, जिसकी जो भी इच्छा होगी, अगर धर्म की इच्छा होगी स्वर्ग प्राप्ति की तो वो भी मिलेगा, यदि वैकुंठ जाने की इच्छा है तो वो भी मिलेगा, और कोई भी कामना होगी तो वो भी मिलेगा, पूरी होगी। सर्व स्वार्थों भी लग रहते हैं। केवल संकीर्तन केवल भगवान के नाम के उच्चारण से, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और यह वाक्य है भगवान ऋषभ देव के पुत्र भक्त शिरोमणि सिद्ध योगी करभाजन जी का। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। सर्व स्वार्थो लभ्यते, हमारा सब स्वार्थ पूरा होगा केवल इस नामोच्चारण से। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस जन्मदिन पर संकल्प करना चाहिए कि हमें भगवान के नाम को बड़ी निष्ठा से जपना है। नाम जप में बाधक सबसे बाधक है वार्तालाप, संसारिक चर्चा। संसारिक चर्चा से बच करके और भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। कभी कोई बात करने वाला व्यक्ति आवे तो अपने शत्रु के समान समझिए कि ये हमारा विनाश कर रहा है। अगर बात करने वाला आता है तो विनाश ही है ना। जिस समय को हम भगवान के नाम में बिता सकते हैं वो समय वार्ता को सुनने में या बोलने में बीत जाता है। तो ये वार्ता करने वाला व्यक्ति शत्रु ही है जो हमारे समय को व्यर्थ बिता देता है। और ये मोबाइल फोन आदि भी ये सब शत्रु के द्वारा ही दिए गए हैं। जप के समय भी आदमी सुन लेता है, क्या वो गोलोक से वाणी आ रही है, सुनने की क्या जरूरत है, क्या संसार का हो जाएगा। लगता है कि ये फोन नहीं सुनेंगे तो संसार ध्वस्त हो जाएगा। और अभी जप के समय महामंत्र जप रहे हैं और बीच में फोन सुनने लगे तो जप का तिरस्कार हुआ, भगवान के नाम की अवहेलना हुई। उसको जपना छोड़ कर हम सुनने लगे एक संसारिक कुत्सित व्यक्ति की बात, तो ये भगवान के नाम का अपमान है, अपराध है, इससे बचना चाहिए। जब जप करना है तो मोबाइल फोन को रख देना चाहिए अलमारी में या कहीं भी, और कहीं भी चिल्लावे बोले कुछ ध्यान मत दीजिए, उसको चिल्लाने दीजिए, शांत हो जाएगा, या उसका मुंह बंद रखना, चिल्लाने न पड़े, साइलेंट पर रख दीजिए। पाठ करते समय, भागवत पढ़ते समय भी यह नियम रखना चाहिए, बीच में भागवत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो मन लगा कर पढ़ना चाहिए। यही अस्त्र है चैतन्य महाप्रभु का, श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम। तो ये प्रसंग चल रहा था, चार दिन का सेमिनार था, तो यही सारांश निकला कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस युग में यही कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा साधन है, इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। हम जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, माया भ्रम भटका रही है, लेकिन इसी चक्र में चलते चलते यदि मानव शरीर मिल जाए और वह भी कलयुग में, और सद्विवेक हो जाए, सुमेधा हो जाए, तो सबसे बड़ा लाभ यही है भगवान के नाम का जप। कीर्तन हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
यही धन है, इसी को जपते रहिए, गाते रहिए। ये हमारा कोई उद्गार नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, ये बहुत बड़े जगेश्वर का अनुभव दिया जा रहा है। इस नाम संकीर्तन से बड़ा लाभ कुछ नहीं है। अतः नाम का आश्रय करके रहना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद।